તારીખ 5/9/1988 પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 425 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 339
तत्व को यथार्थ धारण करने पर भी किस प्रकार अटक जाता है। प्रश्न में ऐसे मोक्षों को लिया है कि जिसमें तत्वज्ञान का अभ्यास अच्छी तरह किया हो, ठीक किया हो, धर्म प्राप्ति में मुख्य निमित्त तो तत्वज्ञान का अभ्यास है। तत्वज्ञान के अभ्यास के अलावा दूसरी अनेक प्रकार की शुभयोग की क्रिया धर्म प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं, इससे कोई धर्म प्राप्ति नहीं होती। पुण्य बंद होता है जरूर, लेकिन वो धर्म नहीं है। इससे धर्म क्या कोई फल मिलता
नहीं,
आत्मकल्याण नहीं होता, जन्म मरण का नाश
नहीं होता।
इसलिए जो तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं और यथार्थ समझते हैं, यथार्थ शब्द का प्रयोग किया है, यथार्थ मैंने शास्त्र अनुकूल, शास्त्र से विपरीत नहीं, फिर भी वो अटक जाता है, इसका मतलब उसको धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे दूसरी बाह्य क्रिया से पुण्यानुबंध होता है, वैसे ही तत्वज्ञान का अभ्यास करके पुण्य का ही बंद हुए और धर्म की प्राप्ति नहीं हुए, तो जैसा दूसरा दूसरी क्रिया में अटक गया ऐसा वो इधर अटक गया। धर्म नहीं प्राप्त होने में दोनों बराबर रहे, दोनों को प्राप्ति नहीं हुई तो दोनों बराबर रहे। इस विषय में लाभ तो दोनों में से किसी को नहीं हुआ। बुद्धि का भी अभ्यास बराबर है, बौद्धिक जो अभ्यास है वो ठीक है। आगम ऐसा कहता है, अध्यात्म ऐसा कहता है, अध्यात्म की विवक्षाएं ऐसे चलती हैं, आगम की विवक्षाएं ऐसे चलती हैं। आगम अनुकूल, यथार्थ का मतलब ये है कि आगम अनुकूल, आगम से प्रतिकूल नहीं। इतना तो मति दोष नहीं था, मतलब मति में उतना दोष नहीं था कि वो कहे कुछ आगम, शास्त्र कहे कुछ और कुछ समझे कुछ, कल्पना कुछ हो जाए और कुछ दूसरी बात समझे, ऐसा तो नहीं। या ज्ञानी गुरु कहे कुछ और समझे कुछ, ऐसा भी नहीं। जैसा वो कहना चाहे ऐसा बराबर समझ में आवे उनको, फिर भी धर्म प्राप्ति में कुछ दूसरा भी कारण है। यहाँ इसका निर्देश करना है, जो निर्देश करना है कि फिर क्या बात तू खोजती है। जब तत्वज्ञान का अभ्यास ठीक हो गया, यथार्थ हुआ, फिर क्या बात खुदती है, ये बात यहाँ आगे करने की बात है। और ये बात महत्व की है, जब हम लोग तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं और हमारे में से करीब करीब धर्म प्राप्ति नहीं होती, ऐसा ही ज्यादा बनता है, तो इस विषय का महत्व बढ़ जाता है स्पष्ट रूप से। उत्तर तत्व को धारण करने पर भी जगत के किन्हीं पदार्थों में गहरे गहरे सुख की कल्पना रह जाए, एक कारण को ये बताया है। पहला कारण, पहला वाला, दो बात बताएंगे इसमें। पहली बात ये बताएंगे, शुभ और अशुभ दो में से कहीं भी अटकता है तो ये बात लिया अशुभ की। जगत के किन्हीं पदार्थों में कहीं भी गहरे गहरे मैंने उन्नान में मैंने अनुभव में, उन्नान जहां जहां अनुन्नान शब्द आता है वहां अनुभव शब्द जो अनुभव की बात है वो वहां बैठती है बराबर, सुख की कल्पना रह जाए। दूसरे पदार्थ के कारण मुझे सुख होता है, अनुकूलता होती है, वास्तव में सुख का संबंध किसी दूसरे पदार्थ से है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो सुख है ही नहीं। जड़ पदार्थ में तो कोई सुख है ही नहीं, सुख गुण नहीं, सुख स्वभाव नहीं, सुख अवस्था नहीं, सुख देने का लेने का कोई धर्म नहीं, कोई बात नहीं उसमें, सुख से कोई संबंध इसका नहीं है। फिर भी ऐसी कल्पना रहती है, कल्पना रहती है तो ये अभिप्राय अनादि का है जीव का, जीव का ये विपरीत अभिप्राय है वो तो अनादि का है। अन्य पदार्थ है सुख होता है ऐसा अनुभव, ऐसा अभिप्राय, ऐसा प्रकार जीव के परिणाम का अनादि से है, वो यूं का यूं रह गया। तत्वज्ञान के अभ्यास में ये बात जरूर आती है कि सुख तो चैतन्य पदार्थ आत्मा में है, इसका धर्म है, इसका गुण है, इसका स्वभाव है, सुख अंतर में से मिलता है, बाहर से कभी सुख नहीं मिलता है, न किसी को मिला है, न मिलने की कोई संभावना है। ये बात तत्वज्ञान के अभ्यास में आती है जरूर, न्याय से, तर्क से, युक्ति से, आगम से, सभी प्रकार से ये बात सम्मत भी होती है, बुद्धिगम्य होती है, सम्मत होती है, उसका निषेध नहीं करते, फिर भी अनुभव ऐसा नहीं करते। और ऐसा अनुभव होने पर उसका निषेध भी नहीं करते, ऐसा क्यों, या ऐसा अनुभव करने पर अंतरावलोकन भी नहीं करते कि ये बात में मुझे कोई आत्मवंचना तो हो रही है, नहीं हो रही है, या हो रही है तो किस प्रकार से हो रही है। अवलोकन करके कैसे सुख हुआ, या सुख हुआ कि नहीं, या कोई सुख संबंधित आभास हुआ, क्या हुआ, जांच करे, अच्छी तरह उसका तलाश करे तो पता चले। ये उस लाइन में नहीं आवे, उस कार्य पद्धति में नहीं आवे, और धारणा से तो हाँ करता रहे और सुखानुभव भी करता रहे, दोनों बात करता रहता है। क्या करता है कि शास्त्र के उपदेश को तो हाँ भरता रहे और अन्य पदार्थ में सुखानुभव भी करता रहे, तो उसको शास्त्र अभ्यास है वो बेकार जाता है, उसका कोई फल नहीं आता, यही कारण है इसका। ये कल्पना करिए, उसको कल्पना करिए, सुख की कल्पना कहो या प्रतिकूलता में दुख की कल्पना कहो, अशाता में दुख की कल्पना को या शाता में सुख की कल्पना को, किसी भी पदार्थ अच्छा लगे यह कहो या किसी भी पदार्थ बुरा लगे यह कहो, समय की बात है। ये सब गहरे गहरे सुख की कल्पना में ये बात है। ये तो यही कारण है, जो बिना स्वयं के परिणाम के अवलोकन बिना कभी इस विषय में जीव की भूल का सुधार होता नहीं। एकमात्र उपाय है, ये शास्त्र पर पढ़ करके कोई इस भूल को निकाल दें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ने में सुनने में ये बात तो बराबर समझ में आती है। लड्डू खाते खाते एक लड्डू खाया, भूख लगी थी तो सुख लगा, दूसरा लड्डू खाया तो इतना सुख नहीं लगा, तीसरे में तो ना दे दिया कि हमको सुख नहीं होगा, अब ये प्रतिकूल पड़ जाएगा, अनुकूल नहीं रहेगा, ये मैंने सुख का कारण नहीं बनेगा, ये दुख का कारण बनेगा, ये युक्ति है, उसको युक्ति कहते हैं, युक्ति अनुभव। तो जो 10 मिनट पहले सुख का कारण लगता था वही 10 मिनट के बाद दुख का कारण लगने लगा, तो ये प्रत्यक्ष युक्ति हो गई कि ये सुख का कारण नहीं था, कल्पना हुई थी जरूर ऐसा। फिर भी दोबारा भूख लगती और लड्डू सामने आता है तो अच्छा लगता है, क्या कारण है? इस बात को समझते हुए भी नहीं मिटने का क्या कारण है? कि स्वयं के सुख दुख के भाव को अनुभव पद्धति से समझने समझते नहीं, अवलोकन करके समझते नहीं, और उसका जो निषेध आना चाहिए वो इस वक्त नहीं आता, जिस वक्त ठीक लगता है उस वक्त निषेध नहीं आता, जिस वक्त अठीक लगता है उस वक्त भी उसका निषेध नहीं आता। पर उसी क्या काल में जो अंतर सावधानी होनी चाहिए कि मैं ज्ञान मात्र हूं और ये सभी पदार्थ ज्ञेय मात्र है, इस प्रकार के ज्ञानानुभव का जो प्रयास है, अपने ज्ञान को अनुभव में लेने का जो प्रयास है, ज्ञान के विषयभूत ज्ञेय को अनुभव लेना नहीं है, इसका अनुभव नहीं लेना है, ज्ञान का ही स्वयं अनुभव लेना है, ऐसा एक अंदर में प्रयत्न होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, उस प्रयास में नहीं होता है जो। तो एक ओर से शास्त्र तत्व ज्ञान का अभ्यास करता रहे, दूसरी ओर से जो औदयिक भावों में इष्ट अनिष्ट सुख दुख का जो परिणाम है वो वैसा का वैसा चलता रहे, इनका जो शास्त्र अभ्यास है वो ठीक नहीं है, ठीक होने पर भी ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है कि उसमें वो भी कहा है कि तुम अपने अनुभव को देखते रहो, उसका मिलान करते रहो, और अनुभव में आने वाले अनेक प्रकार के जो परिणाम है उसका जो अनुभव हो रहा है उसमें ज्ञान भी परिणाम है, उसमें अनेक प्रकार के रागादि विचित्र चित्र विचित्र परिणाम भी हैं, दोनों के अलग अलग भिन्न 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 विरुद्ध स्वभाव है, उनको समझो, और उसमें जो अंतर है उसको समझो, ये सब बातें इसमें आती हैं। तो दोष समझ करके संतुष्ट होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने शास्त्र पढ़ा शास्त्र सुना इसलिए मेरे में कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसा उसको लगता है। पहले ऐसी बातों को मैं नहीं समझता था नहीं जानता था, अभी समझता हूँ जानता हूँ इसलिए मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसा एक नई भ्रमणा उसको पैदा हो जाती है। भ्रमणा में तो था ही, फिर एक भ्रमणा और बढ़ाई, बढ़ गई ये भ्रमणा। भ्रमणा उसकी मिटनी चाहिए थी, भ्रमणा का नाश होना चाहिए था, बजाय नाश होने के वो तो बढ़ गई और एक ज्यादा हो गई, तो मुझे ज्ञान प्राप्ति हो गई है, एक नई तकलीफ या इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक नया अवरोध भी पैदा कर दिया खुद ने। इसलिए तत्व को धारण करने पर भी वो जीव वहां अटक जाता है, उसको धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे उसमें बहुत सी बातें हैं, अथवा कह करके, और दूसरा कि शुभ परिणाम में आश्रय बुद्धि रह जाए। पहले वाली बात अशुभ के विषय में जाती थी, अब शुभ के विषय में कहते हैं कि दोनों प्रकार के परिणाम तो चलते हैं, अकेले किसी को शुभ परिणाम ही चले ऐसा कभी नहीं बनता, अकेले अशुभ परिणाम चले अज्ञान दशा में भी ऐसा कभी नहीं बनता। सभी संसारी जीवों को शुभ परिणाम भी आते हैं, अशुभ परिणाम भी आते हैं, होते ही रहते हैं, नहीं हो ऐसा नहीं बनता। तो इधर शुभ परिणाम में आश्रय बुद्धि रह जाती है, आश्रय बुद्धि इस तरह से रह जाती है कि उसमें अधिकारी हो जाती है। आखिर में तत्वज्ञान का अभ्यास संबंधित जो सुपरिणाम है वो दूसरी दूसरी बाह्य क्रियाओं से कुछ ऊंचे दर्जे के हैं, उच्च कोटि के हैं, इसलिए भी उसको ये लगता है कि मेरी परिणाम है वो तो ठीक है, मैं कोई स्थूल बाह्य क्रिया में नहीं लगा। तत्वज्ञान के विषय में तो मेरे परिणाम आत्मा आत्मस्वरूप के विचारणा में चलते हैं, चिंतन में चलते हैं, आत्मस्वरूप के विषय में अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, इसमें दूसरी भी बहुत सी बातें चलती हैं जिसमें सहज कषाय मंद रहता है। तो जो त्रिकाली परमात्म तत्व है, निर्विकल्प आत्म तत्व है, शुद्धात्म तत्व जिसको कहते हैं, उसका आश्रय होकर के उसका अनुभव हुए, उसकी अधिकाई हुए, ऐसा नहीं हो और एक क्षण के शुभ परिणाम में अधिकाई हो जाए, यही उसकी आश्रय बुद्धि है, उसमें अधिकता लगे। जहां तक किसी भी परिणाम में अधिकता रहती है, चाहे ज्ञान का क्षोभ संभव हो, तो चलो शुभ परिणाम को तो बाजू पे रखो, लेकिन मेरा जो ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, वो तो ज्ञान है, ज्ञान की ज्ञान का उपयोग मेरा बहुत काम करता है। तत्व के विषय में मेरा जो ज्ञान का उपयोग है ये बहुत काम करता है। बात तो क्षोभम के होने से साधारण आम लोगों के बराबरी में कुछ ठीक भी हो, अधिक भी हो, लेकिन जिस आत्मा में अनंत ज्ञान का समुद्र पड़ा है, बेहद ज्ञान पड़ा है, इसके आगे वो क्या चीज है कि कुछ नहीं है, तो उसकी तो अधिकाई आई नहीं। ज्ञान के पर्वत को तो देखा नहीं, पर अणुमात्र ज्ञान खुल गया तो खुला हुआ ज्ञान में उसको लगता है कि मेरे में बहुत ज्ञान है, पहले से तो ज्यादा बहुत बढ़ गया मेरा ज्ञान। तो ऐसे किसी भी परिणाम में अधिकता हो गई उसको आश्रय बुद्धि कहते हैं। जैन दर्शन के मूल सिद्धांत में यह बात है कि क्षणिक परिणामों का ज्यादा मूल्य देना ही नहीं है, जैसा है वैसा जानो, लेकिन उसकी कीमत इतनी नहीं करो जो आत्मा से अपना मूल स्वरूप से भी अधिक हो उसको भूल जाए ऐसी कीमत नहीं करो। अल्पकालीन भाव अल्पकाल मूल्य नहीं आते, मोक्ष मार्ग जी है वो कभी मूल्य नहीं आते, जैसा है वैसा जानते हैं, शुभ को अशुभ जानते हैं, सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन जानते हैं, स्वरूपानंद को स्वरूपानंद जानते हैं, स्थिरता को स्थिरता जानते हैं, ज्ञान को ज्ञान जानते हैं, फिर भी ये सबों का सभी गुणों का अनंत सामर्थ्य जिसमें रहा हो इसके आगे अल्पकालीन क्षणिक पर्याय का क्या मूल्य है?
नहीं
कि कुछ नहीं है, नहीं के बराबर जो है अनंत में भाग केवल ज्ञान की पर्याय अनंत में भाग, परमानंद की पर्याय अनंत में भाग। अनंत के भाग मतलब क्या? तो उसका कोई प्रतिशत नहीं लगता, परसेंटेज नहीं लगता, 1% तो नहीं लगता, पर 0.0000 करके कहीं भी जाओ कोई लगता
नहीं
है, अंक में आ ही नहीं सकता, उतना वो छोटा अंश है जो नहीं के बराबर है। व्यक्त पर्याय को सर्वस्वरूप से अनुभव करें और अव्यक्त स्वभाव को पूरा का पूरा भूल जाए, ऐसी हालत होती है परिणाम के आश्रय में। और अज्ञान दशा में तो बहुधा शुद्ध परिणाम का ही आश्रय होता है, शुद्ध परिणाम तो है ही नहीं उनके पास, सम्यक परिणाम तो है ही नहीं। सम्यक परिणाम वाले कभी परिणाम के आश्रय में रहते नहीं, तो इसलिए मोक्ष मार्ग के पहले शुभ परिणाम होते हैं उसमें आश्रय बुद्धि रहते हैं, या सूक्ष्म के सूक्ष्म भाव में किसी को कषायमंद हुआ तो शुभ परिणाम, किसी को ज्ञान का सूक्ष्म हुआ, बस दो ही बात है। ऐसे परिणाम में आश्रय बुद्धि रह जाए इत्यादि प्रकार से वह जीव अटक जाता है, तत्व ज्ञान का सही अभ्यास करने के बाद भी वो अटक जाता है।
जिज्ञासु है तो कैसा ध्यान करने वाला है तो भी अटक जाता है,
तो भी अटक जाता है, तो भी उसने अभ्यास करके उस अभ्यास का उपयोग क्या किया प्रश्न ये खड़ा होता है,
क्या
अभ्यास तो सही किया लेकिन उपयोग क्या किया है, उपयोग नहीं उसका व्यवहार, एक बात समझ में आई तो वो समझ में उनका अमलीकरण क्या था, उपयोग मैंने उसका
अमलीकरण,
तुम्हारे पास पैसा है लेकिन उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, दवाई की जरूरत पड़े तो पैसा खर्च करके दवाई लाते हो तो पैसे काम की चीज है, और दवाई की जरूरत पड़े और पैसा नहीं खर्च करे तो क्या काम की चीज है, उसका उपयोग नहीं कुछ। ऐसे तत्व ज्ञान समझ में आया और इसका कोई उपयोग नहीं तो वो तो बातें ही बातें रह गई, ये बात तो सुनने की और कहने की रह गई। इत्यादि प्रकार से वह जी भटक जाता है, परंतु जो खास जिज्ञासु आत्मार्थी हो, क्या शब्द प्रयोग किया है इधर के खास खास शब्द विशिष्ट, खास मैंने विशिष्ट स्पेसिफिक बताया, अमुक चौकस प्रकार की योग्यता जैसे मैंने ऐसा आगे जाकर के कहेंगे कि वो योग्यता को यहाँ पात्रता कहते हैं, परंतु जो खास जिज्ञासु आत्मार्थ हो और जिसे खास प्रकार की पात्रता प्रकट हुई हो, ये इसका दूसरा अर्थ है, खास जिज्ञासु आत्मार्थ हो और जिसे खास प्रकार की पात्रता प्रकट हुई हो वह तो कहीं अटकता ही
नहीं।
देखिए ये सूत्र का अर्थ यहाँ लागू करते हैं कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है। तो जिसका ध्येय हुआ कि मुझे परिपूर्ण निष्कलंक शुद्ध दिशा चाहिए, किसी भी प्रकार का कुछ भी अंश में थोड़ा भी दोष भाव कलंकित भाव मुझे नहीं चाहिए, ऐसा जिसका अभिप्राय है, जैसा जिसका ध्येय है, वो ऐसी दशा तक वो कहीं भी अटकेगा नहीं। ये बात ध्यान लागू खास प्रकार की पात्रता, भले ही उसको पहचान नहीं हुई हो, भले ही उसको अभी पहचान नहीं हुई हो, लेकिन उसको ये तो पता है कि मेरी वर्तमान अवस्था में अनेक प्रकार के दोषित परिणाम होते हैं, ये दोष के परिणाम मेरे लिए अच्छे नहीं है, यानी मेरे लिए कलंक है, और मैं ऐसा होना चाहता हूं कि थोड़ा भी दोष मुझे उत्पन्न ही नहीं हो, परिपूर्ण शुद्धता यही मेरा जीवन का ध्येय है। ऐसा जिसने निश्चय कर लिया हो, ऐसा होने का, ऐसा बनने का, जिसने अपना जीवन का ध्येय निश्चित कर लिया हो कि इसी दिशा में मुझे जाना है, कहीं से भी जैसे कैसे भी, पर जाना ही है, नहीं जाना सो बात नहीं है, वो कहीं अटके जाने ये पात्र। पात्रता के लक्षण में पूर्ण शुद्धि के का ध्येय वाला है वो पात्र है। जिज्ञासु आत्मार्थी हो और जिसे खास प्रकार की पात्रता प्रकट हुई हो, आगे बोल आ गया है कि जो मुमुक्षु है, पर ऐसा मुमुक्षु है कि जिसको एक अपना आत्मा ही चाहिए, इस जगत में से जिसको कुछ नहीं चाहिए, इस बोल पर प्रवचन करते हुए गुरुदेव श्री ने ये कहा था कि उसी को ही खास प्रकार की पात्रता कहने में आती है, क्योंकि वो कहीं किसी भी आत्मा के अलावा किसी भी द्रव्य को भाव को अधिकाई देगा नहीं, जो अधिकारी नहीं देगा वो अटकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, सीधी बात है। ऐसा आत्मार्थी हो कि जिसे खास प्रकार की पात्रता प्रकट हुई हो, मैंने उसके परिणाम ऐसे हो कि मेरे मुझे मेरा आत्मा ही चाहिए, इसका मतलब ये भी हो गया कि आत्मा के अलावा मेरा सुख शांति कहीं भी है भी नहीं है, इसलिए नहीं चाहिए, हुए और नहीं चाहिए सो बात नहीं है, सुख शांति तो है जगत में लेकिन मुझे चाहिए नहीं, मैं त्याग करता हूँ, पैसा में सुख है, अनुकूलता में सुख है, लेकिन मुझे तो त्याग कर देना है, ये सुख का मुझे त्याग करना है। लोग कैसे करते हैं त्याग, कि सुख को तो स्थापित कर देते हैं कि है तो सुख के कारण ही है, फिर भी मैं त्यागी हूं, मैं तो बड़ा त्यागी हूं, त्याग करने वाला मैं हूं, इसलिए मैं तो उसका त्याग करता हूं, ये बिल्कुल गलत बात है। उसमें सुख का अभिप्राय और निश्चय रहे, ज्ञान रहे, विश्वास रहे और त्याग कर सके, वो त्याग हो गई नहीं, मूल में से उसका रस मिटने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं, सुख है तो सुख का रस आएगा, जीव का स्वभाव है, सुख को चाहे वो जीव का तो स्वभाव है, तो ये गलत बात है। जिसको एक आत्मा ही चाहिए, इसके गर्भ में ये बात है कि मेरे आत्मा के अलावा मेरी सुख शांति कहीं है भी नहीं, या तो मेरा सब कुछ मेरा मेरे आत्मा में ही है, मेरा सब कुछ मेरे में ही है, मेरा कुछ भी मेरे से बाहर कहीं नहीं है, ऐसा निर्णय इसमें स्वयं आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी पात्रता जिसको प्रकट हुई हो वह तो कहीं अटकता ही नहीं, यह तो कभी अटकता ही
नहीं,
नहीं। खास प्रकार की पात्रता वाला कहीं भी अटकता नहीं। तो कोई अच्छा खिलौना दे देवे तो शांत हो जाता है क्या? कोई मिठाई खिलावे तो वो खा लेता है क्या?
नहीं,
उनके तो दो ही चीज अच्छी है कि खिलौने से वो कोई खेलता है और मिठाई खाने अच्छा लगता है। फिर भी जब उनको ये पता है कि मेरी माँ से मैं अलग हो गया हूँ और माँ ही माँ चाहिए, तब कोई चीज को छूटा नहीं। उतना तो बच्चे को भी पता चलता है, वो भी दूसरी चीज के प्रलोभन में नहीं आता है, क्योंकि उसको तीनों ये परिणाम हो गया है इस वक्त कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माइंड चाहिए, तो कोई चीज को ग्रहण नहीं करता। ऐसे जिसको अपना आत्मा की आत्मिक सुख शांति चाहिए, वो कहीं दूसरे कृत्रिम सुख में अनुकूलता में कहीं भी वो फंसेगा
नहीं।
सीधी बात, यही कारण जिसे खास प्रकार की पात्रता प्रकट हुई हो वह तो कहीं अटकता ही नहीं। नियम रूप से कभी अटक जाएगा वो बात नहीं है, अटकेगा ही
नहीं,
उसे कोई पात्रता कहते हैं।
काम की गारंटी होती है, काम हो जाएगा गारंटी।
पात्रता में भूल नहीं होती, क्षोभ में भूल होती है, क्षोभ में भूल
होती है,
पात्रता में भूल
नहीं होती,
यही कारण। और पात्रता वालों को प्राप्ति होती है, दूसरे को प्राप्ति होती ही नहीं है। प्राप्त पात्रता वाले को तो होती ही है, बिना पात्रता होती ही नहीं। कहीं अटकता ही नहीं। और उस जीव को ज्ञान की मैंने क्षोभ सुन के कोई भूल रह गई हो तो वह भी स्वभाव की लगन के बल से निकल जाती
है।
ज्ञान नहीं हुआ हो और शास्त्र का इतना अभ्यास नहीं हो, कहीं भूल रह जाए, हो सकता है कि कहीं भूल रह जाए। तो ऐसे पात्र जीव को स्वभाव प्राप्ति की लगन होने से क्या कारण है? स्वभाव प्राप्ति की लगन है, लगन वो लगन वाला ही पात्र है, पात्रता वाले को लगन होती ही
है।
ये बात साथ में ले ली लगन की बात। वो भी स्वभाव की लगन से, लगन के बल से निकल जाती है, उनको ये भूल रहती। जो भूल ऐसे हो स्वयं स्वयं की मार्ग प्राप्ति में अवरोध खड़ा हो जाए, ऐसे भूल पात्रता वाले को नहीं रहते, ये नियम है। क्यों? कि उसको ये पता चलता है कि मेरे मार्ग में ये अवरोध आया, अवरोध को अच्छी तरह पहचान लेता है, इसलिए ऐसी भूल उसको रहती नहीं है, वो निकल जाती है, नियम से निकल जाती है, रह ही नहीं। पटक जाए ऐसा कभी बनता नहीं। हो सकता है थोड़ा उलझन में आ जाए, जिसको दर्शन परिसर कहते हैं, जिसको ज्ञान परिसर कहते हैं, जहाँ तक मार्ग भीतर में नहीं मिले वहाँ तक उसकी खोज में तीव्र परिणाम हो जाने से, लगन के तीव्र परिणाम होने पर भी प्राप्ति में देर होती है, तो उनको इस प्रकार की थोड़ी बेचैनी, आकुलता, परेशानी मालूम पड़ती है, फिर भी वो अटकता
नहीं,
अटक जाए ऐसा नहीं बनता, वो भूल निकल जाती है। नहीं होता है तो उसको ये भी पात्रता में होता है कि ये आयु है वो चला जा रहा है, छोटी उम्र में भी जिसको ध्यान गया परिणाम पर, जैसे ये अभिनंदन ग्रंथ में बहन श्री के पत्र पढ़ते हैं, उसमें से ये बात निकलती है कि 15 साल की उम्र में उसको ये लगा, लगने लगा, अरे 15 साल तो 15 साल से 18 साल हो गया, ये तो 20-25 हो जाएगा, अब आगे आ जाकर कितना हो जाएगा। तो ये 15 साल से विचार चला कि मुझे आत्म प्राप्ति हो, पर 18 साल में वो लगा कि ये तो 3-3 साल चल गए, 30 साल चले जाए वो ठंडे रहे, सुनता है, चलता है, पढ़ते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, दर्शन पूजा भक्ति करते हैं, दान देते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, यात्रा कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, 30 साल तक तो कोई गर्मी नहीं आ रहा परिणाम में, और इनको 3 साल में ऐसा होने लगा, अरे कोई 3 साल चला गया, अब और 2-5 साल चला जाने में कितनी देर लग सकती है, तो आयुष पूरा हो जाए तो कितनी देर लग सकती है। तो ये जो चटपटी हुई, लगन हुई, ये पात्रता का चिन्ह है, ये पात्रता का लक्षण है, पात्रता में वो बात आती है। उसको जो समय है वो चला जाता है, बिना अपना काम किए हुए समय चला जाता है, वो बात उसको पुसाती
नहीं है।
तो एक ही काम के पीछे ऐसे लग जाए कि जहां तक वो काम संपन्न नहीं हुए वहां तक छोड़े ही नहीं, करके ही रहे, ऐसा एक धुन, इतनी धगस, इतना जोर परिणाम में चालू हो जाए तो फिर काम आसान है, और ऐसा नहीं हुए तो काम कठिन है। इसके पहले काम कठिन है, इसके बाद जो है काम आसान है। उसको भूल रह गई हो तो वह भी स्वभाव की लगन के बल से निकल जाती है। अंतर के खास प्रकार के पात्रता वाला जी कहीं अटके बिना अपने आत्मा को प्राप्त कर लेता है, नियम से। पात्रता वाला जीव को धर्म की प्राप्ति से वो वंचित रह जाए ऐसा कभी बनता नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन वाला कभी मोक्ष से वंचित रह जाए ऐसा कभी बनता नहीं, ऐसा कभी बने कि सम्यक दर्शन हो गया था, अभी उसको मोक्ष होगा नहीं होगा कौन जाने, भगवान जाने क्या होगा कैसे होगा, ऐसा बनता ही नहीं। वैसे पात्रता वाले को सम्यक दर्शन आदि धर्म की प्राप्ति नहीं हुए ऐसा बनता नहीं, ये नियम बदलता है। पात्रता आवे और छूट जाए तो भी गड़बड़ है, ऐसा होना चाहिए। पात्रता मैंने आत्मार्थिता में वो आगे बढ़ करके धर्म की प्राप्ति करे वहां तक, दूसरी बातों की गड़बड़ बीच में कुछ आनी चाहिए, ये बात है। अनंत काल का काम कर लेना है, जैसे कहते हैं ना व्यापारी लोग कहते हैं कि हमारे तो सीजन में पूरे साल का धंधा करने का होता है, क्या कहते हैं कि कुछ ही दिनों में सारे साल का काम कर लेना है, काठियावाड़ी भाषा में एवं तो भाई आ 8-15 दिन आखा वर्ष नो हाजो करी लेव शू के साजो करी लेव साजो बने क्या सज्जड़ सज्जड़ सॉलिड काम एक साल का खर्चा का सॉलिड काम अथवा 8-15 दिन में एक वर्ष नो हाजो करी लेव एट्ले 8-15 दिन हम दूसरा कुछ काम में लगेंगे नहीं, लगने का कोई मौका नहीं है, समय नहीं है हमारे पास, समय भी नहीं है और दिमाग में जगह भी नहीं रहती, इतने जोर से काम करते हैं मानसिक रूप से भी। तो ये अनंत काल अनंत काल में हाजो करना कितना एक साल का नहीं, दो साल का नहीं, 100 साल का नहीं, 1000 साल का नहीं, 1 करोड़ साल का नहीं, अनंत काल में साधु करो। तो उसके लिए पात्रता में आने वाला जी प्राप्ति हो रही नहीं उसके पहले वो काम को छोड़े ही नहीं, पीछे लग जाए, पीछे लग जाए, पीछे पड़ जाए, करके ही रहूंगा, ऐसा उनके परिणाम में एक ऐसा भाव रह जाता है, हो जाता है कि मेरा कार्य मैं करके ही रहूंगा, सारा भव जो है वो भव भ्रमण चालू रहे, ऐसे भाव में व्यतीत हो जाए, ऐसा वो करने देगा नहीं। चल गया नहीं बोल, अभी चल गया थोड़े देर के पहले। तो आपका बहुत टाइम पेंशन बराबर ब्रह्म भ्रमण चलता रहने ऐसे भाव में यह भाव व्यतीत व्यतीत मैंने पूरा खत्म हो जाए, ऐसा होने देना योग्य नहीं, ये अभिप्राय है पात्र जीव का, यह अभिप्राय है कि जहां तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आनंद प्राप्त आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, भव कटी नहीं हुई, इसके पहले पहले जो भी परिणाम है उसमें भव भ्रमण चालू रहने का सत्व रहा है, योग्यता रही है, ऐसी योग्यता चालू रहे और आयु पूर्ण हो जाए ऐसा होना नहीं, होना देने योग्य नहीं है। भव के अभाव का प्रयत्न करने के लिए यह भव है, ये जो बात पात्रता में महसूस होती है ऐसी ये बात है कि मुझे ये मनुष्य भव मिला है और इस मनुष्य भव में ये परम सत्य मेरे ध्यान पर आया है, मेरा लक्ष्य उस पर गया है कि अनंत भव भ्रमण छोड़ने का कोई उपाय है, यहाँ पर ये जगत में और जगह है ही नहीं, एक यही जगह पर है, तो उसको ये एक नया भाव होता है कि मुझे यह मनुष्य भव इस कार्य के लिए मिला है, ऐसा उसको अंदर में से कोई आवाज आता है, मैंने भाव आता है कि ये भव है, ये भव के अभाव का भव परिभ्रमण छुड़ाने के लिए यह भव आया है, वरना ये भव आए और यह बात ध्यान पर आवे ऐसा कभी बनता नहीं, ऐसा अंदर में से उसको लगता है और वो स्वयं प्रयत्न में लगता है। यहाँ पर कहते हैं अंतर की खास प्रकार की पात्रता वाला जीव कहीं अटके बिना अपने आत्मा को प्राप्त कर लेता है, कहीं अटके बिना मैंने वो आगे बढ़ता ही जाता है, आत्मार्थ की भूमिका में वो पात्रता प्रकट हुई वहां से लेकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति, स्वानुभव की प्राप्ति तक वो आगे ही आगे बढ़ता जाता है, अटकता नहीं कहीं भी। जो अटकता है वो पीछे जाता है और आगे बढ़ता है वो पहुंच जाता है। बस दो बात है, परिणाम है वो तो चाल है, जीव की चाल भाव में, और वो दो दिशा है, तीसरी दिशा नहीं है। एक आत्महित की ऊर्ध्व दिशा है, एक आत्मा के अहित की अधो दिशा है। ऊर्ध्व गति और अधो गति कहते हैं, तो यहाँ ऊर्ध्व गति पंचम गति मोक्ष गति को कहते हैं। या तो ऊर्ध्व दिशा में चले जीव के परिणाम, या तो जीव के परिणाम चले अधो दिशा में, तीसरी तो कोई दिशा है ही नहीं। तो आत्मार्थी पात्रता प्रकट हुई वहां से उनके जो परिणाम है वो ऊर्ध्व दिशा में चलते हैं। कोई भले तीव्र गति से आगे बढ़े, भले कोई मंद गति से आगे बढ़े, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट पात्रता हो सकती है, परंतु वो पीछे नहीं चला जाए, उतनी बात जरूर है। वो अवश्य प्राप्त कर लेगा, उसका भोग वर्णन छूट जाएगा और सादे अनंत काल तक अनंत अनंत समाधि सुख में वो रह जाएगा। अपने आत्मा को प्राप्त कर लेता है। मैंने अपने आत्मा कैसा है कि साक्षात सिद्धपद स्वरूप, जिसको यह अनुभव हुआ, प्राप्त किया, मैंने अनुभव किया कि यह अनुभव किया कि मैं ही साक्षात सिद्धपद स्वरूप हूं। फिर ऐसा इसे अवस्था होना, ये तो सहज होने की चीज हो गई। जिसको कब्जा पूरी संपत्ति और भंडार का मिल गया तो उसका उपयोग करना इसके लिए कोई कठिन बात नहीं है, उसका उपयोग करना वो आसान बात होगा। 425 बोर्ड है वो पात्रता के विषय में। दूसरे जीव नहीं लेकिन जो तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनके लिए मार्गदर्शन बहुत बढ़िया मार्गदर्शन है। तत्व ज्ञान के अभ्यास वाले को भी दूर होना बहुत संभव है। तत्व ज्ञान के अभ्यास में बहुत सी बातें समझने को मिल जाती है और समझने के मिल जाए, समझना हो जाए तो यहाँ से पर्याय दृष्टि में जो ज्ञान हुआ ये बात हो जाती है। कषाय भी बंद होता है। तत्व ज्ञान के अभ्यास करने वालों का भूल होने का दो कारण, एक तो उनका कषाय बंद होता है अभ्यास करते करते, दूसरा ज्ञान खुलता है थोड़ा, उसको ये लगे कि ज्ञान का फल भी मिला, कभी समाधान करता है, बात समझ में आने से समाधान करता है। संसार के अनेक प्रकार के पूर्व कर्म के प्रतिकूल प्रसंग आ जाए, वेदना आदि के, परिवार में किसी का देहांत हो जाना या कई प्रकार के निर्धनता आदि हो जाना, रोग हो जाना, कई किसी अनेक प्रकार के होते हैं, तत्व ज्ञान के माध्यम से वो समाधान करता है, शांति रखता है। वो ऐसा लगे कि चलो ये समझे, समझ में बात आई तो अपन को शांति रही, अगर नहीं समझते जैसे दुनिया के लोग दुखी होते हैं वैसे हम भी दुखी हो जाते हैं, तीव्र दुख के परिणाम होने में तीव्र बंध हो जाते हैं, तीव्र बंध होने से अधोगति में चले जाते, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बढ़ जाता, हमारा इतना अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं होता, अर्थ ध्यान तो हो ही जाता है, मंद अर्थ ध्यान हुए तो तीव्र नहीं हुए, वहाँ उसको संतोष होता है। चलो अपना ज्ञान, ज्ञान अपने को काम में आता है, क्या
काम में आता है
अपना ज्ञान, अपने को काम में आता है, ये सब अटक जाने का धंधा है, ये प्रकार जो भी है वो सब अटक जाने का प्रकार है। ऐसे ऐसे पात्रता वाला जीव कहीं अटकता
नहीं
है, मातु पत्र में आई है। तो खुद को आत्म प्राप्ति नहीं हो रही है, नहीं रोजी हो रही थी तो दुख लगता था, दुख तो लगना चाहिए, तो वहां भी कि दुख लगे फिर क्या, इससे क्या हो गया, ये कोई पर्याप्त बात है क्या? जिसको आत्म प्राप्ति होवे में तत्वज्ञान का अभ्यास करते रहे और सुख चैन से खाते पीते और सोते रहे और तत्वज्ञान का अभ्यास भी करते रहे और दुख तो लगे ही नहीं कि मुझे आत्म प्राप्ति हुई नहीं, इनके लिए तो बात सोचनी ही बेकार है, इनकी चर्चा करनी भी बेकार है। उन्होंने यहाँ महत्व को एक बात ले ली है, जो गहराई से आई है उस बात कि चैन नहीं पड़ता है, आत्म प्राप्ति नहीं हुई तो बेचैनी होगी, बहुत दुख लगने लगा और लिखे तो बहुत दुख हो रहा है, तो इससे क्या हो गया, ऐसा लिख दिया दुख रो दुख हो होने लगा, इससे क्या, दुख होने से कोई काम हो गया क्या? तो इसका ये मतलब है कि हर हालत में मुझे चाहिए ही चाहिए, अप्राप्ति में दुख होना एक योग्यता का सही लक्षण है, और सही लक्षण होते हुए भी ये लक्षण की सच्चाई तब है कि उसमें भी उसको ठीक नहीं लगता, ये सही लक्षण है, इसका मतलब क्या कि क्या हम उसमें अटके क्या?
नहीं,
तो उसमें भी नहीं अटकना है, वहां तक की बात आई थी। मुक्ष के लिए थोड़ा वो समझने लायक चीज है। ये 425 में पात्रता का विचार और भी पात्रता के बहुत से लक्षण हैं जो मैं यहाँ सत्शास्त्र में सत्पुरुष के वचन में वो बात आती हो, उसको पात्रता के विषय में मिलान करना हो, जानकारी करनी हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने परिणाम से उसका मिलान करना हो, अवलोकन करना हो, बहुत सी बातें सत्शास्त्र में आती है पात्रता के विषय में, और इस भूमिका का ये महत्वपूर्ण पहलू है कि बिना पात्रता कभी काम होगा नहीं, उसको अच्छी तरह समझें, और कहीं भी अपनी गलती रहती हो, कहीं भी अपने अटकने का बनता हो, यहाँ से हट जाए आगे बढ़े, ये समझने का अभिप्राय है।
वासुदेव की मंदा भगवान नो जय परम कृपाल श्री महान गुरु देव नो जय विश्वास गंगा जय सारा नो जय श्री कृपया श्री